તારીખ 27/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 751 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 58.
આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર મેં તીન પ્રકાર કે સંકેત કા ઉપદેશ દિયા હૈ, ઉસમેં જિસકો આપ્ત પુરુષ કી પહેચાન હોતી હૈ, વો આપ્ત પુરુષ કી પહેચાન આપ્ત પુરુષ કે અંતરંગ પરિણામ સે હોતી હૈ. જો આત્મ પરિણામ કો સમજ સકતા હૈ, उनको ज्ञानी पुरुष में या मुनिराज में या सर्वज्ञ परमात्मा में ये प्रकार के परिणाम समझ में आते हैं, आता है तो पहचान होती है. और पहचान होती है तो उसमें परमेश्वर बुद्धि आती है. इसलिए परमेश्वर बुद्धि आती है कि सर्वज्ञ वितराग जैन परमेश्वर उसके निमित्त से अनेक जीव तीरते हैं, वैसा ही निमित्तत्व उनको मुनिराज में दिखता है, वैसा ही निमित्तत्व उनको ज्ञानी पुरुष में दिखता है. यही कारण से उनको परमेश्वर बुद्धि आती है. उतनी महिमा आती है उनकी जितनी परमेश्वर की महिमा आती है, उतनी महिमा आती है क्योंकि अपना जो कार्य है वो सिद्ध होने में वो कारण पड़ते हैं. उसका विषय कल चला कि उसकी स्वच्छंद निरोध भक्ति होती है. ऐसा जिसको होता है उसी को ही दूसरा संकेत होता है. पहले कारण के प्राप्ति हुए बिना दूसरे कारण की प्राप्ति किसी को नहीं होती, और पहले और दूसरे कारण की प्राप्ति बिना परमार्थ सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता. जब इस प्रकार की वस्तु व्यवस्था है तो ये तीनों प्रकार के जो सजीवन मूर्ति है उनकी विद्यमानता की आवश्यकता हमें कितनी है वो मालूम पड़नी चाहिए. जब इसकी विद्यमानता का हम विचार करते हैं तो सर्वज्ञ तीर्थंकर का तो काल चला गया, 2500 साल हो गए. अब कोई सर्वज्ञ तीर्थंकर हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे, ये परिस्थिति हमारी आयु के काल में तो नहीं है. जो भी हमारे 150 साल की आयु हो उसमें सर्वज्ञ तीर्थंकर का दर्शन हो जाए वो बात तो, केवली का दर्शन तो होने का पैदा नहीं होता. अब बात रही बाकी के दो सजीवन मूर्ति की, एक मुनिराज की और एक ज्ञानी पुरुष के. तो टोडरमल जी साहब आज से 250 साल पहले लिख गए कि पिछले 500-600 साल में 5-6 सैकड़ा हमारे संप्रदाय में कोई भावलिंगी संत मुनि देखा नहीं जाता, भावलिंगी मुनि का दर्शन नहीं होता. अगर कोई भावलिंगी मुनि होते तो कृपा गुरुदेव और कहन गुरुदेव इनके चरण में गए बिना नहीं रहते. गुरुदेव तो बहुत स्पष्ट बोलते थे जब अपूर्व अवसर पर प्रवचन करते थे कि जैसा कृपा गुरुदेव ने मुनिराज का स्वरूप अपूर्व अवसर में गाया है, ऐसा कोई भावलिंगी संत आज मिल जाए तो हम तो इसके पीछे निकल पड़े, इनके साथ ही जंगल में रह जाए हम तो. और इनके पैर का तलवा चाटे, क्या बोलते थे, इनके पैर का तलवा चाटे, ऐसे बोलते थे। बहुत भक्ति से बात करते थे मुनिराज की। ये अफवाह है कि गुरुदेव मुनियों को नहीं मानते हैं। गुरुदेव को मुनियों की, सच्चे मुनियों की अत्यंत अत्यंत भक्ति थी, और ये अपूर्व अवसर के प्रवचनों पर से स्पष्ट होता है। तो वो भी जब नहीं रहे तो हमारे लिए अब ये कि पद बाकी रहता है कि जो ज्ञानी पुरुष अगर कहीं मिल जाए तो हम हमारा उनका उनको पहचानने का हमारा प्रसंग हो जाए, अवसर हो जाए। मिले तो पहचान सकते हैं, वो बात नहीं है, पहचान करने की योग्यता है तो पहचान सकते हैं, लेकिन पहचान करने की योग्यता हो और विद्यमान नहीं हो तो एक बड़ी विटंबना खड़ी हो जाती है। इसके लिए बहुत तड़पन हो जाती है, और बहुत तड़पन के कारण से अगर उनको मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, क्योंकि उसी प्रकार की कुदरत की व्यवस्था बैठ जाती है। फिर करें क्या, कर तो कुछ सकते नहीं, बाहर में क्या कर सकते हैं। उनको जो विधि मानता नहीं है तो उनके वियोग के जो परिणाम होंगे वो होंगे, तो दर्द आएगा उसमें, क्या है। तो उसका जैसे सुगानी जी थे, तो परिस्थिति ऐसी थी कि उनको कलकत्ता में रहना पड़ता था और गुरुदेव सोनगढ़ में विराजते थे। तो लिखते हैं कि हमारा पुण्य योग नहीं है, इसका हमको बहुत बहुत खेद रहता है, क्या करें हम। ये लिखते लिखते हमको गरम गरम आंसू आता है, तो वेदना होती है। जब उनको अनंत उपकारी मिले फिर भी परिस्थिति वश उनके सानिध्य में वो नहीं रह पाते थे, रहना चाहते थे अवश्य लेकिन रह नहीं पाते थे, तो उनको इसकी वेदना जो है वो इनके पत्र में आज भी देखने में आती है। हर पत्र में गुरुदेव की बहुत उत्कृष्ट भक्ति की है उन्होंने, और अपने जो सानिध्य नहीं मिलता है उसका खेद भी व्यक्त किया है। हैं? हाँ, क्षेत्र की दूरी नहीं हो तो समीप हो ही गए ने। भाव में तो समीपता होती है, अब द्रव्य में तो क्षेत्र की दूरी होती है या नहीं होती है, दो में से एक बात होती है। तो क्षेत्र की जो दूरी होती है वहां वेदना होती है, ज्यादा क्षेत्र की दूरी होती है तो ज्यादा वेदना होती है, कम क्षेत्र की दूरी होती है तो थोड़ा मात्रा में फर्क पड़ता है, लेकिन वेदना तो होती ही है। वो तो वेदना वाले को पूछ लीजिए आप, जिसको वेदना हो, वेदना तो वेदना से समझी जाती है, वेदना कोई वर्णन से थोड़ी नहीं समझी जाती है, वेदना तो वेदना ही होती है, लेकिन होती है, तीव्र वेदना होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुमुक्षु यथार्थ मुमुक्षु को तो संयोग में भी प्रगति होती है और वियोग की वेदना में भी उनकी निर्मलता ही बढ़ती है, उनको तो नुकसान नहीं होता, फिर भी वो वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बात अवश्य है। बर्दाश्त करता तो वेदना नहीं होती, बर्दाश्त नहीं कर सकता है इसलिए वेदना होती है, बात कर। कारण से हाँ लगता था तो वेदना आती है, वेदना आती है, उनके भी पत्र है जो उसमें काफी वेदना व्यक्त हुई है और काफी भक्ति भी व्यक्त हुई है। तो यहाँ हमारा जो प्रकरण चल रहा है उसमें एक लक्ष्य खींचने की जो बात है वो है कि दूसरा संकेत का प्रकरण तो हम चलाएंगे जैसा है वैसा, परंतु ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जिसको विद्यमान सत्पुरुष के काल में उनकी पहचान हुई हो उनका ये काम है। पहला संकेत हुआ ही न हो और कोई क्षोभ या बुद्धि के बलबूते पे दूसरे संकेत को प्राप्त हो जाए, ये बात संभव नहीं है, ये नहीं बन सकता, क्योंकि कारण कार्य की श्रृंखला है। अगर कारण कारण को हम स्वीकार नहीं करें तो ये कारण कार्य विपरीतता हो जाएगी, जो मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। मिथ्या ज्ञान का तीन प्रकार के लक्षण है, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण विपरीतता। तीन प्रकार का विपर्यास से मिथ्या ज्ञान चलता है। सम्यक ज्ञान में ये तीनों के विपरीतता नहीं रहती। तो जिसको पहला कारण बना उसको भी दूसरा कारण बनने वाला है। इसके सिवा इसकी चर्चा हम अवश्य करें, लेकिन कारण बनने वाला तो नहीं है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति ते संकेत में बीजो प्रकार कहो छे। परमार्थ मैंने परम प्रयोजन भूत ऐसा आत्म स्वभाव, वो आत्म स्वभाव कैसा है? मोटे रूप में तो अनंत गुणों का त्रिकाल ध्रुव पिंड बोला जाता है, मोटे रूप में ऐसा बोला जाता है। स्थूल रूप से ऐसा कहा जाता है, सूक्ष्म रूप से उनका रूप ऐसा है कि वो न द्रव के भेद रूप है न पर्याय के भेद रूप है, वो अनुभय स्वरूप है, न नित्य भी है न अनित्य भी है। और नित्यानित्य जो प्रमाण का विषय है ऐसा भी नहीं है, तो फिर कैसा? वो बात थोड़ी सूक्ष्म पड़ती है, लेकिन यहां जो विषय है वो उसी विषय है कि अनुभव तो पर्याय में होता है और अनुभवांश से प्रतीति आती है, तो पर्याय में स्वभाव आया कहां से? हम तो आज तक ये समझते थे कि त्रिकाली द्रव्य तो पर्याय रहित है, और बाद में सही है कि त्रिकाली द्रव्य तो पर्याय रहित है, लेकिन वो त्रिकाली का भेद हम रखते हैं तो त्रिकाली को भी हम सही रूप में नहीं समझ सकते। वास्तव में जो त्रिकाली द्रव्य है वो द्रव्य स्वभाव है, और स्वभाव द्रव्य में भी होता है, स्वभाव गुण में भी होता है, और स्वभाव मिथ्यात्व अवस्था में ज्ञान के अनुभव अंश के पर्याय में होता है। किसमें होता है? अनुभव अंश के पर्याय में होता है, इसलिए वहां से यह स्वभाव पाया जाता है, यही कारण है इसका। हम एक तर्क लगा सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो त्रिकाली द्रव्य सामान्य द्रव्य स्वभाव है तो उसका ज्ञान में प्रकट अंश नहीं पाया जाता, तो किसी को इसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसका ज्ञान होने का कोई अवसर नहीं मिलता, ये परिस्थिति हो जाती। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मा की पहचान करने का परिशिष्ट में एक प्रकरण लिखा, चर्चा चलाई है, प्रश्न उत्तर रख करके खुद ने प्रश्न उत्तर रखा है। मुद्दा तो एक ही है कि आत्मस्वरूप की पहचान कैसे हो, लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है, बिना लक्षण कोई लक्ष्य को पहचान सके ऐसी व्यवस्था तीन काल में वस्तु के स्वरूप में तो नहीं है। वो बात गुरुदेव ने परमागम सार के 637 गुजराती में 637 नंबर ना वचनामृत में वो बात कही है, पढ़ लेना। वो वचनामृत भी लक्ष्य लक्षण की चर्चा के प्रवचन दौरान वो बात चली है, तो उसमें लिखा है कि तीन काल में भी ज्ञान लक्षण बिना ज्ञान स्वभावे आत्मा को कोई पहचान सके ऐसा बनता नहीं, तीन काल में नहीं बनने वाला।
ये ज्ञान लक्षण पर्याय रूप रहता है कि गुण रूप रहता है?
ज्ञान लक्षण पर्याय में स्वभाव रूप रहता है। क्या? ज्ञान की पर्याय में स्वभाव रूप रहता है। फिर से, हमको ज्ञान पर्याय में ज्ञान का पर्यायत्व नहीं देखना है। अब देखिए कैसे बात काम होता है कि है ज्ञान की पर्याय में, परंतु हमको ज्ञान की पर्याय में पर्यायत्व का लक्ष्य छोड़ करके मात्र ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को पहचानना है। थोड़ी अंदर की प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अंदर की है कि ज्ञान, ज्ञान में भी ज्ञान विशेष को हटा करके, ज्ञान का पर्यायत्व को लक्ष्य में से हटा करके, सामान्य ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है उसमें स्वभाव क्या है वो अगर लक्ष्य में आता है तो लक्षण से लक्ष्य की प्रतीति आ जाती है और वो वेदन से आती है। वो बात टीका में लिखी है, टीका में क्या परिशिष्ट में लिखी है, बहुत स्पष्ट लिखी है। प्रसिद्धम ही ज्ञानम, मूल संस्कृत शब्द में जो ध्वनि है, अंडरटोन है, बहुत स्पष्ट उठता है। जितना अनुवाद में नहीं उठता इतनी मूल भाषा में उठता है। प्रसिद्धम ही ज्ञानम, ज्ञान तो प्रसिद्ध है, सबको प्रकट है, प्रसिद्ध है, अनुभव गोचर है। कैसा है? प्रकट है, प्रसिद्ध है और अनुभव गोचर भी है। ज्ञान मात्रस्य, कितना ज्ञान मात्र शब्द लिया है, वो सामान्य ज्ञान को लेते हैं। ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, वो ज्ञान मात्र की, मैंने स्वभाव की, स्वसंवेदन से सिद्धि माने प्राप्ति है। तो ज्ञान में ज्ञान वेदन है सभी को, आबाल गोपाल को, लेकिन स्वसंवेदन रूप नहीं है। वेदन रूप है लेकिन स्वसंवेदन रूप नहीं है, वही आपत्ति है। फिर से कि सभी प्राणी को, जो भी जितने भी जीव है, कभी अभी कुछ भी हो, आबाल गोपाल में सब आ जाता है, सबको ज्ञान में ज्ञान वेदन है, लाना नहीं पड़ता है ही, लेकिन उसमें स्वपना नहीं है। जीव को स्वपना और जगह है और यही बड़ी आपत्ति है। अगर ज्ञान में ज्ञान वेदन स्वयं के रूप में वेदन में आए तो दूसरा संकित हो जाता है, स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति आती है कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। कठिन कौन सी कठिनाई है बताओ? ऐसा है, थोड़ा शब्द पर उपयोग को नहीं लगा करके शब्द के वाच्य पर थोड़ा उपयोग लगाएं तो और क्लियर हो जाएगा कि हमको ज्ञान का पर्याय जो है चालू है, हर समय चालू है। उसमें हमको न न न न न न रूप में कॉमन फैक्टर चलता है, उसको पकड़ना है तो उसमें कितना व्यवच्छेद करना पड़ेगा कि जो निराकार है उनको भी हमको व्यवच्छेद करना पड़ेगा, उसमें जो पर्यायत्व है उसका भी व्यवच्छेद करना पड़ेगा। वो नग्न 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 अपना कंटिन्यू रहता है, चालू 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 ही रहता है। वहां जो वेदन है वो वेदन अगर स्वपणे वेदा जाए तो वही आत्मा है। ते छे जीव स्वरूप वाद्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। लो आत्मसिद्धि में स्पष्ट बात है।
वेदन तो और वेदन तो पर्याय है,
वेदन पर्याय है, लेकिन पर्यायत्व हमें लक्ष्य में नहीं लेना है। बात थोड़ी सूक्ष्म है अजीत भाई, यहाँ विषय की सूक्ष्मता है कि वेदन पर्याय में है तो भी पर्यायत्व का भेद हमारे लक्ष्य में नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप तो वो बात करते हैं वो 25 कलश में 26 कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते कि मैं भेद स्वरूप भी नहीं, मैं अभेद स्वरूप भी नहीं, नित्य अनित्य स्वरूप तो नहीं, नित्य स्वरूप भी नहीं, अशुद्ध स्वरूप तो नहीं, शुद्ध स्वरूप भी नहीं। मतलब क्या है? जब मैं अशुद्ध स्वरूप नहीं वो तो ठीक है कि अशुद्ध नहीं का व्यवहार नहीं कर, लेकिन मैं शुद्ध स्वरूप नहीं, इसका मतलब क्या निकलता है कि खलु चिच्चिदेव, मैं तो चिन्ह मात्र ज्ञान मात्र जो हूं सो हूं, वो अनुभव स्वरूप की बात है। एक अनुभव स्वरूप को दिखाने के लिए 26 कलश लिखा, बताइए सारे समय सार में कौन से सब्जेक्ट पर 26 कलश चला है? कहीं नहीं चला है। चला है उतना विषय स्पष्ट है वहां पर, वो विषय और जगह जो स्पष्ट है और सूक्ष्म पड़ेगा विषय, इसलिए हम आधार नहीं लेते हैं। उन 50 गाथा जो अलिंग ग्रहण की है उसमें 6 का 36 बोल है, 6 बोल का 36 अरूपम अगंधम स्पर्शम, एक एक बोल का 6-6 निकाला है, ऐसा 6 बोल 6 शब्द का 36 बोल है। इस सभी 6 में 5वां बोल ऐसा ही है, सब में 6 बोल एक ही प्रकार के हैं, रूप के जगह रस, रस के जगह शब्द, शब्द के जगह स्पर्श, उतना ही बदला है, बाकी सब के सब वही बात है। तो अनेक विनियों में जो साधारण है वहां साधारण शब्द लिया है, सामान्य शब्द की जगह, और जो वेदन से नजर आता है वही मैं आत्मा हूं। और परमागम सार के 733 नंबर के वचनामृत में वो बात गुरुदेव करते हैं बहुत सादे सरल भाषा में। राजेंद्र भाई अभी सरल भाषा में समझ लीजिए, स्वपणे अनुभव मां आवतु ज्ञान तेज आत्मा छे। आ गुरुदेव नो वचनामृत छे, परमागम सार 733 को लाए हो तो निकाल लेंगे। स्वपणे अनुभव मां आवतु ज्ञान तेज आत्मा छे। आप तो कहेंगे कि स्वपणे अनुभव मां आवतु ज्ञान तो पर्याय छे, आप तो यही कहेंगे, लेकिन श्रुत ज्ञान ही आत्मा है और अनुभूति ही आत्मा है। क्यों उसको आत्मा कहा? कि वहां स्वभाव प्रकट है, इसलिए आत्मा कहा। स्वभाव है वही आत्मा है और आत्मा है वही स्वभाव है।
द्वैत समाप्त हो गया,
द्वैत समाप्त, स्वभाव में द्वैत है ही नहीं, इसलिए स्वभाव द्रव में गुण में और पर्याय में होने पर भी न द्रव के भेद रूप है, न गुण के भेद रूप है, न पर्याय के भेद रूप है, इसलिए अनुभव स्वरूप कहा है। हाँ वेदन पकड़ा है, हाँ तो ख्याल में आयो, और जो वेदन पकड़ा है तो एम जो स्वपण आवे तो ओखण थी जाए, पहचान थी जाए। हाँ थोड़ो अभ्यास चाले से, प्रैक्टिस चाले से, सामान्य ज्ञान ने ग्रहण करवानी एक अंदरनी प्रैक्टिस चाले से, भाव भाषण जेम जेम प्रैक्टिस चाले से तेम तेम एनु भाव भाषण आवे छे, ए भाव भाषण जारे स्वपण आवे छे त्यारे ओखण थी जाय छे। वेदन गौण होकर के ऐसा यहां नहीं लेना है, यहां उतना लेना है कि वेदन में स्वपणा आता है तो स्वभाव की पहचान हो जाती है, और जब स्वभाव की पहचान हो जाती है तो वेदन गौण हो जाता है, क्योंकि वेदन पर्याय में है और स्वभाव मुख्य हो जाता है, ऐसा बनता है। पहचान हो जाती है तब स्वभाव की मुख्यता आ जाती है और पर्याय की और वेदन की सभी की गौणता रह जाती है, क्योंकि स्वभाव इतना महान है, जो महान है वो मुख्य होता है, जो महान नहीं है वो गौण होता है, दीवान होता है राजा का, वो हमारे यहाँ आता है तो हम उसको राजा की तरह उसके खातिर बर्दाश्त करेंगे, सत्कार करेंगे, लेकिन वो राजा के साथ आएगा ना तो राजा का सत्कार होगा, दीवान का नहीं होगा, उसको साइड में खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा वेदन है, उसका महत्व अवश्य है, लेकिन स्वभाव के आगे उतना महत्व नहीं है कि उसकी मुख्यता की जाए। हम एक और बात स्पष्ट करने के लिए लेते हैं कि अगर पर्याय में त्रिकाली नित्य आत्मा नहीं होता, तो अगर अनुभव स्वरूप नहीं होता तो लक्षण से लक्ष्य की पहचान होने का कोई अवसर नहीं। अनित्य ऐसी पर्याय में स्वभाव पाया नहीं जाता। अगर एकांत पर्याय में स्वभाव होता तो पर्याय का नाश होने से स्वभाव का नाश हो जाता है, जबकि पर्याय का नाश होता है तीन काल में। तो यहां जो समकित का दूसरा प्रकार कहा है, माने वो समकित का अंग है या वो सम्यक तो उसको होता ही है, इसकी चर्चा वो निर्भाण दर्शन की पगडंडी है उसके तीसरे प्रकरण में विस्तार से की है, कि वहां थोड़ा और स्पष्टीकरण इसलिए लिया है कि हम लोग जो तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अभ्यास करते करते हमें आत्मस्वरूप का निर्णय करना है। तो आत्मस्वरूप का निर्णय करने के लिए तत्व अभ्यास के काल में खास करके हम द्रव्यानुयोग के आगम को स्वाध्याय में लेते हैं। द्रव्यानुयोग के आगम को स्वाध्याय में लेते हुए हम आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ज्ञान करते हैं, आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय की भी समझ करते हैं और उत्पाद भी ध्रुव से भी आत्मा कैसा है उसका समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसा प्रयास करते करते हम कुछ निर्णय कर लेते हैं कि हमारा आत्मा भी ऐसा है। तो अध्यात्म में तो स्वरूप निर्णय है, वो स्वरूप अनुभव का कारण है, वो दूसरा संकेत है, लेकिन ऐसा हम समझते हुए भी हमको संकेत नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसा हमारा निर्णय है वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। हमें कहीं भी आत्मस्वरूप का निर्णय करते करते कल्पना नहीं करनी है, फिर भी कल्पना हो जाती है तो गृहित मिथ्यात हो जाता है, वहां गृहित मिथ्यात पैदा हो जाता है, क्योंकि प्रयोजन भूत विषय है। कृपालु देव ने वो बात लिया है कि आत्मस्वरूप का निर्णय करने वाले को निर्णय के काल में कल्पना हो जाती है, इसका तीन कारण है, वो बात ली है पत्रांक 449 में। किसी के पास ग्रंथ हो लेके आना, क्योंकि सामने हो गया तो रेफरेंस वगैरह जो है देख सकेंगे। प्रश्न संख्या 372 पत्रांक 449 उसमें अच्छा जो इसमें है देख लेना प्रश्न संख्या बता दो है? पहला पत्र है इसमें है पहला पत्र पांचवा पैराग्राफ है उस पत्र में पांचवा पैराग्राफ है आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पना बड़े विचारने में लोक संगना ओख संगना और असत्संग यह कारण है। तीन कारण से तत्व का अभ्यास करने वाले को भी कल्पना हो जाती है विचार करते करते आत्मा का विचार करते करते कल्पना हो जाती है। इसका तीन कारण लिया है। एक लोक संगना। लोक संगना माने क्या कि जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हुए भी लोगों की मुख्यता करते हैं कि लोग को ऐसा लगेगा लोगों को ऐसा लगेगा लोगों को ऐसा लगेगा लोक संगना का जो भूत अनादि से सवार है ही उसको उतारना पड़ेगा। उसको समाज प्रतिबंध भी कहने में आता है क्यों समाज को क्या लगेगा उसको नजर में रखते हुए हमको सब कुछ करना चाहिए तो उसमें आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं हो पाता है। समाज प्रतिबंध जिसको नहीं है वही आत्मस्वरूप का निर्णय कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आत्मस्वरूप का निर्णय करने वाले को भीतर में देखना पड़ता है बाहर में देखने को बंद करना पड़ता है। जिसको लोक संज्ञा होती है उनकी दृष्टि इतने जोर से बाहर बाहर में समाज के प्रति चिपकी हुई रहती है कि उसको अंदर आने में तकलीफ हो जाएगी। वो अंदर नहीं आ पाएगा निर्णय करने के लिए अंदर नहीं आ सकेगा। कल एक रेफरेंस दिया था कि पूज्य गुरुदेव ने 144 गाथा का प्रवचन करते हुए इस विषय का स्पष्टीकरण बहुत दिया है और वो प्रवचन पूज्य बैंसरी ने झेला हुआ है और समयसार प्रवचन में से शताब्दी अंक में आत्मधर्म में वो प्रवचन दिया गया है। गुरुदेव का शताब्दी अंक निकला आत्मधर्म में। वहां वो लिखते हैं कि निर्णय किस आधार से होता है। निमित्त के आधार से नहीं होता, राग के आधार से भी नहीं होता, राग में विकल्प के आधार से नहीं होता। जो हम आत्मा का विकल्प करते हैं कि हमारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है ध्रुव है नित्य है कुटस्थ है वैसा है वैसा है एक है अभेद है शुद्ध है ऐसे विकल्प के आधार से नहीं होता। लेकिन ज्ञान स्वभाव का निर्णय ज्ञान के आधार से होता है। वहां ज्ञान की क्रिया आधार है और स्वभाव उसका आधेय है पर्याय आधार है पर स्वभाव मैंने द्रव्य आधेय है। वो तो समर अधिकार में लिया कि नहीं लिया उपयोग में उपयोग 181-82-83 में लिया कि नहीं लिया तो वो तो समर भी ऐसा होता है और निर्णय भी ऐसा ही होता है। तो ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निर्णय जब होता है तब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि वहां ज्ञान को अपने प्रति थोड़ा झुका झुकना पड़ता है तब उसको वेदन का पता चलता है। जो ज्ञान विशेष उधर जाता है उसको अपने में अपना वेदन को ग्रहण करने के लिए थोड़ा भीतर में आना पड़ता है। दिशा बदलती है ज्ञान के वहां। सीधी बात करें तो ज्ञान के परिणमन की दिशा वहां बदलती है वहां स्वसन्मुखता होती है। इसलिए ऐसे निर्णय वाले को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है। उसका वर्ग अलग है क्लास अलग है उसका। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो अकेला मिथ्या सीधा मिथ्या दृष्टि नहीं है एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा जाता है शास्त्र में। तो ऐसा बोलने के लिए लोक संज्ञा छोड़नी पड़ती है। लोक संज्ञा वाले को ये निर्णय नहीं हो सकता। ओक संज्ञा वाले को निर्णय नहीं हो सकता। भोगसंज्ञा किसको रहती है? कि जो मात्र विचार ही करता है, विचार को प्रयोग में नहीं लेता है, भोगसंज्ञा प्रयोग से छूटती है, मात्र विचार से भोगसंज्ञा नहीं छूटती है। तो जो जो विचार को प्रयोग में अमलीकरण में ले जाता है तब भोगसंज्ञा छूटती है, तो आत्मस्वरूप का निर्णय होता है, वरना कल्पना होती है। विचार करते 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 कोई कल्पना में चढ़ जाता है कि मेरी आत्मा ऐसी है। नहीं, लोक संज्ञा और अवोक संज्ञा चली जाए तो सामान्य पर झुके ऐसा है। वो कचरा साफ होवे तो शुद्धि होवे ने, कचरा तो अनादि का पड़ा है, लोक संज्ञा अवोक संज्ञा का, तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। वो निकले उसी काल में प्रयास चलना चाहिए अंदर में जाने का, वो रख करके नहीं कर सकते, उसी काल में करे। लोक संज्ञा ओक संज्ञा की निवृत्ति होवे उसी काल में अंदर का पुरुषार्थ चले, प्रयत्न चले, तो निर्णय हो सकता है। लेकिन वो बात सब्जेक्ट टू कंडीशन रही, पहला संकेत हो उनको, बाकी का नहीं। वो बात रख करके है, अभी तो दूसरे का चल रहा है, लेकिन वो शर्त भूल नहीं जावे। इसमें क्या है, हम भूल जाते हैं, बुद्धि वाले आदमी है, बुद्धि लगाना के प्रयत्न करते हैं, बुद्धि सिर्फ बुद्धि लगाएंगे तो भी काम होने वाला नहीं है। ये बुद्धि की पहुंच का विषय नहीं है, कहने का अभिप्राय वो है कि यह सिर्फ बुद्धि के पहुंच का विषय नहीं है, योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। पात्रता शब्द एक है, लेकिन इसमें तीन कारण बने हुए हैं। एक कारण तो दर्शन मोह का अनुभाग टूटा हुआ है, वो भी सत्पुरुष की पहचान पूर्वक। दूसरा उनके सुविचारणा है, आत्मकल्याण के सिवा दूसरा उसका कोई ध्येय नहीं है, मोक्षार्थी है। तीसरा उनका विभाव रस ठंडा हो गया है, कहीं भी तीव्र रस से उनका परिणमन नहीं आता है उसको। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति जो योग्य सुयोग्य हुई उसको पात्रता कहते हैं। वो पात्रता में ये काम बनता है, बुद्धि से वो काम बन जाता है, और पात्रता नहीं हुए ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बिना पात्रता वाले की भी बुद्धि होती है, और पात्रता वाले की इतनी बुद्धि नहीं हो लेकिन पात्रता में आ जाए तो उतना प्रयोजन सज सके उतनी बुद्धि उसमें है ही, संगनी पंचेंद्रिय है। इसलिए हाँ ठीक है, आत्मभाव को पकड़ना है, सही बात है, आत्मविकल्प को छोड़ करके आत्मभाव को पकड़ना है। और कृपालु देव के शब्द में कहे तो कि एक अन्य भाव है और एक स्वभाव है, अन्य भाव को छोड़ना है, स्वभाव को ग्रहण करना है। मतलब कि स्वपने अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। बहुत सरल भाषा में गुरुदेव ने 733 में ये बात कर दिया है। पर असत्संग का दोष तो बड़ा है, जिसको सत्संग की रुचि है, यानी सत्संग की रुचि नहीं है, उनको कभी स्वरूप का निर्णय हो सकता नहीं, उनको भी कल्पना हो जाएगी। असत्संग में सत्संग के अलावा सभी प्रकार का संग असत्संग है। क्या सत्संग को छोड़ करके जितना भी संग है वो असत्संग ही है, उसमें सब कुटुंब परिवार और सब प्रकार के व्यवहार के प्रसंग वो भी असत्संग है। घर में लड़के का शादी हो ये सत्संग प्रसंग है या असत्संग का प्रसंग है? हैं, असत्संग का प्रसंग है, तो इतना धूमधाम क्यों होती है असत्संग के प्रसंग में? गाजा बाजा बजता है और आमंत्रण पत्रिका जो है हम छपवाते हैं उसमें शुभ लग्न पत्रिका क्या लगते हैं लिखते हैं, शुभ लग्न पत्रिका है या अशुभ लग्न पत्रिका है? ये तो अशुभ है, शुभ भी नहीं है, लेकिन चलता है, दुनिया में ऐसा ही चलता है। ये 733 वाला है, इधर पृष्ठ संख्या 70 नंबर ना पाना ऊपर 733 नंबर नो गुरुदेव नो वचनामृत छे। करीब करीब तो जो रेफरेंस देते हैं वो उसमें छाटे हुए हैं। परद्रव के प्रति जो वृत्ति होती है वो शुभ या अशुभ होती है, वो आत्मा नहीं है, वो विकल्प है लेकिन आत्मा नहीं है। चाहे आत्मा का विकल्प हो लेकिन थर्ड पर्सन होता है महात्मा, इसलिए वो परद्रव्य प्रति के वृत्ति है, स्वद्रव्य के प्रति की वृत्ति नहीं है वो। स्वपणे अनुभवातु ज्ञानते आत्मा छे, है कितना सरस टुकड़ो छे, स्वपणे अनुभवातु ज्ञानते आत्मा छे। आवा ज्ञानना स्वसंवेदननी कला, ये आर्ट है। आ रीते अंदर मा पोताना ज्ञान मा वेदन ज्ञान मा स्वपणु अंगीकार करवो, स्वीकार करवो, सत्कार करवो, ये ज्ञाननी कला छे। ये स्वसंवेदन रूप ज्ञाननी कला छे, ते मोक्षनी कला छे, एनु अनुसंधान पूर्ण शुद्धि साथे छे। आत्मा के अनुभव की यह कला ही सच्ची कला है, बाकी दुनियादारी की सब कला है वो झूठी कला है, सच्ची कला नहीं है। तेनो वारंवार अभ्यास करवा जेवू छे, एटले एनी प्रेक्टिस करवा जेवी छे, एम के छे। वेदन ने आविर्भाव करवानी अने एमा स्वपण अंगीकार करवानी प्रेक्टिस करवा जेवी छे, तेनो वारंवार अभ्यास करवा जेवू छे। दुख थी छूटवू होय अने सुखी थवू होय तो परभावोथी भिन्न आत्माने जाणीने तेनो ज अभ्यास करवा જેવો છે। આ ચોખ્ખું વચનામૃત છે 733। દુઃખ થી છૂટવું હોય અને સુખી થવું હોય, આત્માનું સુખ, આ બારમાં પૈસા વગેરેનું નહીં, દુઃખથી છૂટવું હોય અને સુખી થવું હોય તો પરભાવોથી ભિન્ન આત્માને જાણીને, પરદ્રવ્યને પરભાવસે ભિન્ન આત્મા કો જાન કરકે, વો ભિન્નતા કા અભ્યાસ, ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે, એમ ત્યાં ભેદ જ્ઞાનનો આ કળા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, શું અભ્યાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય, એમ તો લખે છે અભ્યાસ કરવો, પ્રેક્ટિસ કરવી, પ્રેક્ટિસ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય। બાહ્ય સાધન સત્સંગ છે, અંતરંગ સાધન પોતાની પ્રેક્ટિસ છે। હા, વો તો ઇસલી હમ બાર બાર બીચ મે ભી બોલ દેતે હૈ કે વો સબ્જેક્ટ ટુ કન્ડિશન હૈ કે જિસકો સત્પુરુષ કી પહેચાન હોતી હૈ ઉનકો હી દૂસરા કારણ બનેગા, દૂસરે કો પહેચાન હુએ જિસકો નહીં હુએ ઉસકો તો કારણ બનને વાલા કભી હૈ હી નહીં। हाँ वो भी ठीक है, वो पहचान से तो भक्ति कला आती है, वो भी सीखनी नहीं पड़ती है। जिसको भी सत्पुरुष की भक्ति होती है, आज्ञा रुचि रूप भक्ति, वो पहचान से आती है। तो पहला कारण तो आ ही गया उसमें, जिसको पहला कारण होता है उसको दूसरा कारण होता है। जिसको भक्ति कला होती है उनको ज्ञान कला होती है, सीधी ज्ञान कला किसको होती नहीं है, किसी को भी नहीं होती है। નહીં આવી જવાય, વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી, વસ્તુ કે સ્વરૂપમાં એવું વાત નહીં હૈ, એ સાયન્સ હૈ બિલકુલ। નહીં હોતા હૈ उनका पूर्णता का भी लक्ष्य नहीं होता है। पूर्णता का लक्ष्य के लिए भी समाज प्रतिबंध नहीं चाहिए, कुटुंब प्रतिबंध नहीं चाहिए और देह प्रतिबंध भी नहीं चाहिए। वहाँ तो और तीन है, समाज प्रतिबंध के सिवा भी दूसरा भी तीन है, वो चारों प्रतिबंध तोड़ना पड़ेगा। और संकल्प विकल्प प्रतिबंध भी नहीं चाहिए, वो संकल्प विकल्प प्रतिबंध उस प्रकार का है कि हम ऐसा विकल्प करते रहेंगे, ऐसा विकल्प करेंगे तो काम होगा, ऐसा विकल्प करेंगे तो काम होगा, आत्मा का चिंतन इस प्रकार के विकल्प से करेंगे तो काम होगा, वो विकल्प प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञान से ज्ञान की सिद्धि लेना है, वेदन को पकड़ना है, बहुत सूक्ष्म विषय अंतर्मुख का। तो ऐसे कारणों में उदासीन हुए बिना जीव को अपना स्वरूप का विचार करने का बल आता नहीं है। आखिर की पंक्ति में लिखते हैं, प्रगट ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष के प्रगट आत्मस्वरूप को बताने वाले वचन मिलने पर भी, क्या लिखते आखिर की पंक्ति में, ज्ञानी पुरुष ना प्रगट आत्मस्वरूप ने कहता एवा वचनों, चालू वर्तमान लीधो छे, पूर्ण वर्तमान नहीं लिया, भावी वर्तमान नहीं लिया, व्याकरण में आता है ना पास्ट प्रेजेंट पास्ट, हाँ वो नहीं, चालू वर्तमान कहता एवा वचनों, ज्ञानी पुरुष विराजमान हो प्रगट आत्म स्वरूप ने कहता एवं वचन हो सामे, पण उपरना कारणों ने लीधे जीव ने स्वरूप नो विचार करवाने बलवान थता नथी, तेनु ज्ञान दर्शन मूळथी आवृत थयेलु छे, मलिन छे, माटे शुद्ध स्वरूप नो विचार करवाते समर्थ थतो नथी। तो ये जो संकेत का दूसरा प्रकार है वो एक ऐसा प्रकार है कि जो सम्यक दर्शन को ले आता है, जिसको यह अनुभवान से प्रतीति होती है, वो अपने ज्ञान को अंदर में अवलोकन करता है, किस प्रसंग में होती है उसका चित्रण निर्वाण दर्शन की केड़िए माँ 56 માં પાના ઉપર છે, જોઈ લેજો જેની પાસે પુસ્તક હોય, પછી ચર્ચા કરવી હશે તો આપણે ચર્ચાના પ્રસંગમાં એને લઈશું, અને હિન્દીમાં કોઈ બીજું પાનું છે એનું, ગુજરાતીમાં 56 પાના ઉપર છે, ઉસમે વો બાત લિયા હૈ કે જો અપને અવલોકન કે કાલ મે, નિજાવલોકન કે કાલ મે અપના જ્ઞાન કા અવલોકન જ્ઞાન સ્વયં કરતા હૈ, तो उनका उनको दो बात नजर आती है अनुभवांश में। कौन सी दो बात नजर में आती है? कि एक तो हमारा जो स्वभाव है वो सतत है, सातत्य नजर आता है, सतत भोका वो चलता है ज्ञान वेदन, सतत 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 निकलता है, एक धारा वही निकलता है। उस पर से क्या अंदाज आता है कि हमारे में अनंत ज्ञान भरा है, ऐसा अंदाज आता है। जैसे दृष्टांत रूप से हम समझ सकते हैं कि जब पाताल में से निकलता है पानी निकलता है या पेट्रोलियम निकलता है, तो उसका ड्रिलिंग का जो छेद है उसमें से फोर्स से वो लिक्विड बाहर आता है, वो गैस होता है तो गैस भी बाहर आता है, तो वहां भीतर में तलवे में पहुंचे बिना उस विषय के जो विज्ञानी है तजज्ञ है वो बता देता है कि इतना करोड़ घन मीटर कितना वहां ये पेट्रोलियम या गैस या माल पड़ा है, उसको नीचे जाना नहीं पड़ता, 3000 मीटर में वहां नीचे नहीं जाना पड़ता, तो इसका फोर्स है और इसका वॉल्यूम्स है पकड़ता है कि उधर कितना माल पड़ा है। ज्ञान परद्रव्य में इतना काम करता है, तो जो ज्ञान स्वयं जानने वाला हो और अपने को जानता हो और अपनी सातत्यता को जानता हो, वो अपने स्वभाव की अनंतता, सामर्थ्य की अनंतता को वहां पहचान लेता है, भाव भाषण के रूप में पहचानता है, अनुमान और तर्क के विषय रूप नहीं पहचानता है, अनुमान और तर्क है उसका ये विषय नहीं, ये प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को ग्रहण करने का विषय है। एक मुद्दा तो वो है, दूसरा मुद्दा है वो सुख का भी है कि ज्ञान स्वयं कषाय रहित मालूम पड़ने से सुख का स्वरूप वहां से मालूम पड़ता है। कषाय है वो दुख रूप है, पर कषाय का अभाव, आकुलता का अभाव वही सुख है। हम लोग एक बात बार बार रखते हैं कि हमने सुख को तो पहचाना नहीं, सुख का अनुभव हमने कभी किया नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें? बाहर में सुख का आकर्षण है तो हमारे परिणाम बाहर दौड़ते हैं पंचेंद्रिय के विषय में, भीतर का सुख देखा नहीं इसलिए हमको वहां का खिंचाव नहीं है। अब करे क्या कि तुम देखो तो देखने को मिल सकता है। तुम्हारा जो ज्ञान सामान्य मात्र ज्ञान है उसमें कषाय का तीनों काल भाव है अज्ञानी को भी, क्योंकि ज्ञान कभी कषाय रूप नहीं हुआ, कषाय कभी ज्ञान रूप हुआ ही नहीं। लेकिन भिन्न ज्ञान को देखो प्रभावों से, भिन्न ज्ञान को अकेला ज्ञान को मात्र ज्ञान को देखने से वो कषाय का अभाव रहित दिखने में आता है, यानी सुख रूप दिखने में आता है। तो वह ऐसा मालूम पड़ता है जिसको स्वरूप का निर्णय होता है उसको कि मेरा रूप तो सुख है। क्या? मेरा रूप तो सुख है। हम ज्ञान को ज्ञान के रूप में नहीं पहचानते, हम ज्ञान को सुख के रूप में पहचानते हैं। जैसे आदमी तो आदमी है लेकिन इसकी शकल से उसकी पहचान है। क्या? इसकी शकल एक पूरा आदमी का अंग होता है उतना सा, लेकिन पहचान यहां से होती है। आदमी सब आदमी ही होता है, मनुष्य सब मनुष्य ही होता है, लेकिन पहचान उसकी मुद्रा से, मुख मुद्रा से, शकल से आती है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन इसकी पहचान सुख से आती है। हमारा ज्ञान सुख रूप है, ज्ञान का रूप देखने को मिलता है और वो बहुत सुंदर है। हमको सुंदरता पसंद है ना? हाँ, रूप की सुंदरता हम पसंद करते हैं, हमको कुरूप नहीं पसंद करते, लेकिन ज्ञान स्वयं सुख रूप और सुंदर है। और हमारी वृत्ति अनादि से सुख के पीछे दौड़ती है। कितनी दौड़ती है कि अगर हमें सुख मिलता है तो कोई भी साहस करने के लिए हम तैयार हैं। कितना साहस करते हैं आजकल, आवागमन करते हैं तो ये प्लेन में 40,000 फुट ऊपर जाते हैं, वो पायलट बता दे कि हम 40,000 फीट ऊपर चलते हैं आजकल, क्योंकि 25,000 फुट तक तो पर्वत आ सकते हैं, 40,000 फुट ऊपर जाते हैं, यहां से गिरे तो प्लेन क्रैश हो तो क्या हो गए, हड्डी भी हाथ में नहीं आ गए, मुर्दा तो नहीं मिले लेकिन हड्डी भी नहीं मिले। उतना साहस क्यों हम करते हैं? क्या कोई गारंटी है कि प्लेन क्रैश नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या? उसका गारंटी कोई नहीं है, गारंटी नहीं है, फिर भी हम क्यों इतना साहस उठाते हैं कि हमको सुख मिलने का वहां अभिप्राय है। सुख के पीछे हमने बहुत साहस किया है, इतनी हमारी सुख के लिए वृत्ति आतुर है। ऐसी वृत्ति को अगर सुख का समुद्र दिखने में आए तो क्या हो जाए उसका, वो तो देख लेना। जैसे एक दो चार दिन के भूखा आदमी होने, बहुत भूख लगी हो, उनको मिष्ठान का थाल थाली पूरी भरचक भर के देवे कि खाओ तुम, तो धीरे धीरे खाएगा? हाँ, टूट पड़ेगा खाने में, वो टूट पड़ेगा। ऐसे हम अनादिकाल से सुख से भूखे हैं, सुख की भूख हमारी अनादिकाल से है। अगर सुख का समुद्र भीतर में दिखा तो जोर से वृत्ति उस तरफ दौड़ेगी, वो जोर से दौड़ेगी, उसी का नाम सम्यक सम्मुख का पुरुषार्थ है, जो सहज होता है कि अरे इतना सुख मेरे में भरा है, तो उस सुख के लिए वो वृत्ति दौड़ लगाएगी, यानी बहुत अल्पकाल में उसको परमार्थ संकित अभेद निर्विकल्प स्वानुभव हो जाएगा, क्योंकि दौड़ उतनी जोर से आती है। तो ये भी एक लक्षण है जिसको स्वरूप की पहचान हुई इसका, कि इसका पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुखता का तेज हो जाएगा, अतिशय तेज हो जाएगा, और उसका अनुभव होगा होगा और होगा, इसलिए उनको कारण बोला है। वो कारण कभी निष्फल जाता नहीं है क्योंकि उसने सुख का समुद्र देख लिया है। सुख निधान, कितना सुख का निधान कि जिसका कोई अंत नहीं है, उतना अनंत सुख का धाम तो अंदर में देखने में आता है, तो वहां परिणाम जोर से चलने लगता है। और तीसरा मुद्दा उसमें प्रत्यक्षता का है। यहां अनुमान इसलिए नहीं किया जाता कि अनुमान में वस्तु परोक्ष रहती है, यहां निर्णय है वो प्रत्यक्ष अंश से अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप का निर्णय होता है। जो वेदन है वो कभी परोक्ष हो ही नहीं सकता। परोक्ष होने में तो बीच में कोई माध्यम निमित्त पड़ता है। जैसे हम आंख से देखते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है आंख का वो उसमें निमित्त है, जो लेंस है बीच में वो, और लेंस को रखने के लिए पूरा पूरा आंख का व्यवस्था है। लेकिन ठीक जगह पर लेंस बिठा हुआ है तो वहां से हम देखते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। नजरों नजर देखा हुआ ज्ञान भी परोक्ष है, कानों कान सुना हुआ भी ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि बीच में इंद्रिय का माध्यम है, पुद्गल का माध्यम है, और वो वृत्ति पर तरफ की है। जबकि यहां ज्ञान भीतर में अपने वेदन को स्वयं को ग्रहण करता है, वहां कोई इंद्रिय का माध्यम नहीं। ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निर्णय होता है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में जो महत्वपूर्ण बात किया है वो है कि अभी तक हम राग के आधार से विचार करते थे, अनादि से राग का आधार से हम ज्ञान करते हैं, वो आत्म विकल्प है, वो आत्म विचार भी नहीं है, आत्म विकल्प है, उसमें विकल्प का आधार है। इसलिए जब स्वरूप निर्णय होता है तो आधार बदलता है, ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निर्णय होता है। तो ऐसा होता है, वो बात को जोर से प्रतिपादन करने के लिए गुरुदेव ने नई भाषा का प्रयोग किया है वहां पर, और ध्यान से वो प्रवचन पढ़ने योग्य है। उसमें लिखा है कि ऐसे निर्णय के काल में अंशतः राग का अभाव होकर के ये निर्णय होता है। क्या बोले? अंश राग नो अभाव थे आवो निर्णय थाय छे। आप गुजराती वाक्य छे तो आप तो, हम तो अभ्यासी लोग हैं तत्व ज्ञान के, तो गुरुदेव को तर्क करेंगे कि महाराज ये कैसी बात बनी, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, अभी सम्यक दर्शन होने के पहले राग का अभाव कैसे हुआ? अजीत भाई, हाँ सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, पर आपने बोला कि राग का अभाव होकर के निर्णय हुआ, तो राग का अभाव कैसे हुआ?